नमस्कार भारत, आज है 13 फरवरी दिन मंगलवार। सभी श्रोताओं को कुलदीप मिश्र का नमस्कार। राष्ट्रपति ट्रंप ने पेश की अमेरिका का आधारभूत ढांचा सुधारने की महत्वाकांक्षी और खर्चीली योजना, लेकिन कहां से आएगा पैसा?
This morning I submitted legislative principles to Congress that will spur the biggest and boldest infrastructure investment.
त्रिपुरा में मतदान को सिर्फ 5 दिन बाकी, इस बार मजबूत दिख रही भाजपा, क्या तोड़ पाएगी वाम वर्चस्व?
सचमुच चुनाव का जो भी नतीजा होगा, अगर बीजेपी नहीं जीतता तो विपक्ष के सबसे बड़ा दल बन के आएंगे, ये मेरे को मानना पड़ेगा।
और इलाहाबाद में दलित छात्र की सरेआम हत्या की गूंज पहुंची विधानसभा तक, विपक्ष ने योगी सरकार को घेरा। अखबारों की समीक्षा भी होगी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आधारभूत ढांचे में बड़े निवेश की अपनी महत्वाकांक्षी योजना पेश की है। ट्रंप ने इसे अमेरिकी इतिहास की इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ी और साहसिक निवेश योजना बताते हुए कहा कि वो हजारों नई नौकरियां पैदा करना चाहते हैं, सड़कें, बंदरगाह और एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। ट्रंप ने ट्वीट कर अमरीकी नागरिकों से अपने देश के विकास में निवेश करने का आग्रह भी किया है। करीब 1,500 अरब डॉलर के इन निवेश प्रस्तावों में संघीय सरकार सिर्फ 200 अरब डॉलर ही खर्च करेगी। दक्षिण अफ्रीका की सत्ताधारी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC ने राष्ट्रपति जैकब जूमा से 2 दिनों के भीतर इस्तीफा देने के लिए कहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे जूमा पर फैसला लेने के लिए बुलाई गई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक देर रात तक चलती रही। पार्टी के नेता सिरिल रामाफोसा बैठक को छोड़कर पास ही स्थित राष्ट्रपति निवास में गए। बताया जा रहा है कि उन्होंने राष्ट्रपति से अगले 2 दिनों में इस्तीफा देने के लिए कहा है। यदि वो पद नहीं छोड़ते हैं तो उन्हें हटाया जा सकता है। प्रिटोरिया में मौजूद बीबीसी संवाददाता के मुताबिक रामाफोसा पहले से बटी पार्टी में और मतभेद नहीं चाहते हैं और वो सर्वसम्मति से फैसला चाहते हैं। वहीं विपक्ष की इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स पार्टी के नेता जूलियस मालेमा ने बैठक को निरुद्देश्य कहा है। उन्होंने ANC पर भ्रष्ट व्यवस्था का बचाव करने के आरोप लगाए हैं। पहले ANC की युवा इकाई से जुड़े रहे मालेमा ने कहा,
They want Zuma to go because it's the time for Cyril's group to eat.
वो चाहते हैं कि जूमा चले जाएं क्योंकि अब सिरिल समूह के माल खाने का वक्त आ गया है और वो इसे परिवर्तन कह रहे हैं। ये परिवर्तन नहीं है, बल्कि ये तो इस सिद्धांत का ही दुरुपयोग है। दरअसल पक्ष बदल रहे हैं, पद बदल रहे हैं, इसे परिवर्तन के बजाय सत्ता हड़पना कहा जाना चाहिए। ये परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक भ्रष्ट व्यक्ति के हाथ से सत्ता का दूसरे व्यक्ति के हाथ में जाना है। जॉर्जिया के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल साक्षविली को पोलैंड वापस भेज दिया गया है। वो नया राजनीतिक करियर शुरू करने यूक्रेन गए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव की सड़क पर उन्हें नकाबपोश बंदूकधारियों ने अगवा कर लिया था। वारसा पहुंचने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए साक्षविली ने कहा,
I was very nicely met by Polish side and the Ukrainian side was absolutely outrageous, totally lawless, it was a kidnapping.
पोलैंड की ओर से मेरा बहुत अच्छे से अभिवादन किया गया, लेकिन यूक्रेन में मेरा अपमान हुआ है। वहाँ कोई कानून नहीं था, मेरा अवैध तरीके से अपहरण हुआ, लेकिन पोलैंड के लोग बहुत अच्छे हैं और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। लाइबेरिया के गृह युद्ध में हुए सबसे बड़े अत्याचार में जिंदा बचे लोग अब अमरीका में न्याय मांग रहे हैं। हत्याओं में शामिल एक संदिग्ध फिलहाल अमेरिका में ही रह रहे हैं। करीब 3 दशक पहले लाइबेरिया की सेना ने सेंट पीटर्स लुथेरन चर्च पर हमला किया था। इस दौरान 600 से अधिक लोगों को गोली मार दी गई थी। हमले में बचे 4 लोगों ने अब अमेरिका में मुकदमा दायर किया है। ब्रिटेन के सबसे बड़े राहत संगठनों में से एक ऑक्सफैम पर अपने सदस्यों पर हैती और चाड में रहते हुए कार्य के दौरान स्थानीय पीड़ितों के साथ सेक्स करने के आरोपों के बाद दबाव और बढ़ गया है। संस्था के नियामक ने आरोपों को सनसनीखेज बताते हुए जांच शुरू कर दी है। ब्रितानी सरकार ने ऑक्सफैम को जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का वक्त दिया है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव और मैं हूं कुलदीप मिश्र। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमरीका फर्स्ट यानी अमरीका पहले के वायदे के साथ सत्ता में आए थे और अब उन्होंने अमरीका के आधारभूत ढांचे को नए सिरे से मजबूत बनाने के लिए अपनी बहुप्रचारित और महत्वाकांक्षी योजना पेश की है। उन्होंने अपने नए बजट के हिस्से के तौर पर अमरीकी जनता से हजारों नौकरियां देने, सड़कें, बंदरगाह और हवाई अड्डे बनाने का वादा किया है। उन्होंने इसे आधारभूत ढांचे में अमरीका के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे साहसी निवेश बताया है। इसके लिए करीब $1.5 trillion का खर्च आएगा। इस रकम का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि यह भारत की जीडीपी से सिर्फ $1 trillion कम है। ट्रंप ने कहा है कि मध्य पूर्व में मूर्खतापूर्ण तरीके से $7 trillion खर्च करने के बजाय अब वक्त है कि अमेरिका के लोग अपने देश में निवेश करें। ब्यौरा सुनिए दिलनवाज पाशा से।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बहुप्रचारित ढांचागत सुधार कार्यक्रम पेश कर दिया है। ट्रंप देश में सड़कों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और हाईवे के निर्माण पर अगले 10 साल में $200 अरब संघीय मद से खर्च करना चाहते हैं। राष्ट्रपति को उम्मीद है कि अमेरिका के प्रांत और निजी क्षेत्र की कंपनियां भी करीब $1,300 अरब इस दौरान खर्च करेंगी। अपने कार्यक्रम की घोषणा करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा,
This morning I submitted legislative principles to Congress that will spur the biggest
आज सुबह मैंने कांग्रेस के सामने वैधानिक प्रस्ताव पेश किए जो अमरीकी इतिहास में ढांचागत निर्माण में सबसे बड़े और सबसे साहसिक निवेश को प्रोत्साहित करेंगे। इससे अमरीका के इंफ्रास्ट्रक्चर में $1.5 trillion से लेकर $2 trillion तक का निवेश होगा। इसमें सार्वजनिक और निजी भागीदारियां भी काफी होंगी और इस तरह हम इस कार्यक्रम के लिए बजट की व्यवस्था कर पाएंगे और समय पर इसे पूरा कर पाएंगे। इस नई योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर भी $50 अरब खर्च किए जाएंगे। 2016 में हुए राष्ट्रपति चुनावों में ट्रंप को ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त समर्थन मिला था। मूलभूत सुविधाओं में बड़े पैमाने पर सुधार करना राष्ट्रपति ट्रंप का अहम चुनावी वादा भी था, लेकिन इसको लागू करने का मतलब होगा कि अब अमरीकियों को ज्यादा टैक्स, टोल टैक्स और फीस चुकानी पड़ सकती है। यही नहीं, अब पर्यावरण संबंधी मंजूरियां हासिल करने के लिए भी समय सीमा कम की जा रही है। प्रस्तावों के बारे में विस्तार से बताते हुए व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव सारा सैंडर्स ने कहा,
$200 billion in federal funds to spur at least $1.5 trillion in infrastructure investments.
संघीय फंडिंग के $200 अरब से इंफ्रास्ट्रक्चर में $1.5 trillion के निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें प्रांतीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर और निजी स्तर पर साझेदारियां होंगी। लंबे समय से अनदेखे किए गए अमेरिका के ग्रामीण क्षेत्र में नए निवेश होंगे। फैसले लेने के अधिकार भी प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन को दिए जाएंगे। प्रोजेक्टों के अनुमति देने की प्रक्रिया में भी तेजी लाई जाएगी। वहीं ट्रंप की इस योजना का विरोध भी शुरू हो गया है। डेमोक्रेट पार्टी संघीय खर्च की राशि से संतुष्ट नहीं है और इससे 5 गुना निवेश की मांग कर रही है। वहीं अमेरिका में बीबीसी संवाददाता एंथोनी जुर्कर का मानना है कि ट्रंप के लिए ये योजना पेश करना एक बड़ी बात है, लेकिन इसे कांग्रेस से पारित करा लेना बेहद मुश्किल होगा। ट्रंप ने अपना विधेयक पेश कर दिया है, अब उनके सामने कांग्रेस से इसे पास कराने की चुनौती है। ऐसे में जब ये बिल अंतिम रूप में पास होगा तो बहुत मुमकिन है कि इसमें कई बड़े बदलाव हो चुके हों।
दिलनवाज पाशा से ब्यौरा सुन रहे थे आप। मैंने अब से थोड़ी देर पहले न्यूयॉर्क में पत्रकार सलीम रिजवी से संपर्क किया और उनसे पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप ने वादा तो कर दिया है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है।
देखिए, आमतौर पर ये कहा जाता है कि ये जो राष्ट्रपति अपना बजट कांग्रेस को भेजते हैं तो ये ज्यादातर बेसिकली एक उनका विजन स्टेटमेंट होता है। ये उनका एक बेसिकली कहा जाता है कि वो क्या करना चाहते हैं, ये उनका एक प्लान है बेसिकली। लेकिन इन हालात में अब जबकि ऐसे ही सरकारी कर्ज जो है वो काफी बढ़ा हुआ है अमेरिका का, और इस बजट के से कहा जा रहा है कि जो अगले 10 साल में $7 खरब जो है कर्जा बढ़ जाएगा, तो जो डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन हैं, दोनों कांग्रेस में, दोनों सदनों में अमेरिकी कांग्रेस के, तो वो दोनों उनमें से बहुत से जो है इसके हक में नहीं है कि वो इस तरह की जो है सरकारी कर्जे बढ़ा दें। आपको याद होगा कि पिछले महीने 1.5 खरब डॉलर के करीब का जो है वो टैक्स की कटौती भी का ऐलान भी किया था, तो वो जाहिर है कि उससे भी रेवेन्यू कम आएगा, टैक्स कम आएगा सरकार के पास। तो 1.5 खरब डॉलर वो दोनों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स बहुत से पूछ रहे हैं कि भाई ये कहाँ से पैसा आएगा और इतना अगले 10 साल में कैसे लगाया जाएगा। तो 7 खरब डॉलर का जो है कर्ज ये उनके हलक से उतर नहीं रहा है डेमोक्रेट,
वही मतलब क्या ये इसको अमल में ला पाना अभी बहुत दूर की कौड़ी लग रहा है।
बिल्कुल, क्योंकि ये कांग्रेस देखिए ये पेश करते हैं कांग्रेस को, कांग्रेस को इसे मंजूर करना होता है, जो भी पैसा आएगा वो कांग्रेस मंजूर करेगी तब अमरीकी सरकार के पास आता है खर्च करने के लिए। ये बजट जो है सिर्फ एक विजन स्टेटमेंट होके रह जाएगा और ये मंजूरी इस जो शक्ल है अभी मौजूदा शक्ल में पास होने वाला नहीं।
ठीक है, अभी मौजूदा शक्ल में ये पास होने वाला नहीं है, लेकिन जो अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत ट्रंप बार बार अपनी इच्छाएं जता रहे हैं और वो जैसे मिडिल ईस्ट का उन्होंने खासतौर से जिक्र किया, उन्होंने वहाँ फलस्तीन और बाकी जगहों के फंड्स रोके, वो साफ है कि वो धन का प्रवाह अमेरिका से बाहर कम करना चाहते हैं। तो इस नीति के क्या कुछ वैश्विक असर आप देखते हैं आने वाले समय में?
जी, आपको याद होगा इन्होंने अपने चुनाव के अभियान के दौरान भी यही कहा था, बराबर कहते रहे थे कि भाई हमें ज्यादा पैसा देश के अंदर लगाना चाहिए, देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो लगाना चाहिए बजाय इसके कि हम बाहर जाएं और दूसरे मुल्कों में लगाएं। और इनका इशारा ओबामा प्रशासन के दौर में ये होता था कि भाई अफगानिस्तान में और मिडल ईस्ट में आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, वही ये अभी भी कह रहे हैं। और इनका जोर इस बजट में भी अगर आप देखें तो डिफेंस पे इन्होंने खासा पैसा लगाने की बात की है और उसमें जो सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम्स हैं गरीबों के लिए और छात्रों के लिए जो वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं उनमें बहुत कटौती है, एनवायरनमेंट पे कटौती है। तो वो ये चाहते हैं कि भाई जो बाहर है पैसा कम लगे और अपने चुनावी जितने भी वादे थे उनको पूरा करने की इनकी एक और कोशिश लगती है।
ये थे न्यूयॉर्क में पत्रकार सलीम रिजवी।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
अब बात भारत की, जहां अगले विधानसभा चुनाव होने हैं पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में। 18 फरवरी को त्रिपुरा में वोट डाले जाएंगे। भारत के तीसरे सबसे छोटे राज्य में जीतने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के माणिक सरकार यहां 1998 से मुख्यमंत्री हैं। इस चुनाव में भाजपा उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है, रजनीश कुमार की रिपोर्ट।
कम्युनिस्ट पार्टी का जो शासन त्रिपुरा में रहा वो शासन के दौरान त्रिपुरा राज्य विकास की रेस में सबसे पीछे के नंबर पर जाकर खड़ा है। 25 साल कोई छोटा समय नहीं।
अगर 1988 से 1993 तक 5 साल की कांग्रेस नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को छोड़ दें तो त्रिपुरा में 1978 से लेकर अब तक वाम मोर्चे की सरकार है। वर्तमान मुख्यमंत्री माणिक सरकार 1998 से सत्ता में है। इसी महीने 18 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान है और भारतीय जनता पार्टी कम्युनिस्टों के इस मजबूत किले में सेंध लगाने का दावा कर रही है। बीजेपी प्रमुख अमित शाह 2/3 बहुमत से जीत हासिल करने का दावा कर रहे हैं। त्रिपुरा के 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने 50 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, जिनमें से 49 की जमानत जब्त हो गई थी। आखिर पिछले 5 सालों में ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी 2/3 बहुमत से जीत का दावा कर रही है? वरिष्ठ पत्रकार परंजय गुहा ठाकुर आता कहते हैं,
भारतीय जनता पार्टी था ही नहीं कहीं पे, त्रिपुरा में था ही नहीं, मगर आज बहुत सारे जो वहाँ के जो विधायक है, वहाँ के जितने सारे कार्यकर्ता है जो एक समय कांग्रेस में थे, एक समय टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस में भी थे, सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए। हाँ, सचमुच चुनाव का जो भी नतीजा होगा, अगर बीजेपी नहीं जीतता तो विपक्ष के सबसे बड़ा दल बन के आए, ये मेरे को मानना पड़ेगा।
साक्षरता दर के मामले में त्रिपुरा देश भर में अव्वल है। मानव विकास सूचकांक में भी बीजेपी शासित राज्यों से काफी आगे है। मनरेगा को लागू करने में भी त्रिपुरा पहले नंबर पर है। मुख्यमंत्री माणिक सरकार के बारे में कहा जाता है कि वो अशांत त्रिपुरा में शांति और सुरक्षा बहाल करने में कामयाब रहे हैं। ऐसे में अमित शाह त्रिपुरा के पिछड़ने की बात क्यों कह रहे हैं? त्रिपुरा में बीजेपी के प्रभारी सुनील देवधर कहते हैं,
किसी को अपना नाम लिखने आता है लिटरेसी हो गई, इससे एजुकेशन बढ़ता है क्या? एजुकेशन तो उनके पासिंग परसेंटेज से होता है। आपके पास पासिंग परसेंटेज का आंकड़ा है? मैं बता रहा हूँ, 15% पासिंग परसेंटेज इस राज्य में, एजुकेशन का कवाड़ा हो गया है। 1993 में ये सत्ता में आए, तब से लेकर 2010 तक 17 साल इन्होंने एक भी टीचर रिक्रूट नहीं किया था, और बाद में जब इन्होंने RTE आने के बाद रिक्रूट किए, सारे नियमों को तोड़कर इन्होंने 10,323 टीचर्स रिक्रूट किए, जिनकी नौकरियां सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले साल खारिज कर दी। 67% बीपीएल कार्ड होल्डर्स है।
त्रिपुरा में वाम मोर्चे की सरकार ने अच्छे और बुरे दिन दोनों देखे हैं। वाम मोर्चे की सरकार को राज्य में उग्रवाद खत्म करने का श्रेय दिया जाता है और इसी आधार पर यहां से आफ्सपा यानी आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट को वापस लिया गया था। मानिक सरकार पर बीजेपी की जो राय है उसे किस रूप में देखा जाना चाहिए? अर्थशास्त्र के प्रोफेसर प्रभात पटनायक कहते हैं,
क्योंकि वो जो विकास की बात करते हैं वो ये ह्यूमन डेवलपमेंट से जुड़ा नहीं है और ये गलत है। विकास का सही मायने तो यही है ना कि लोगों का क्या हाल है, लिटरेसी का क्या हाल है, हेल्थ का क्या हाल है वगैरह। अब वो अमित शाह उसको नहीं देखते। जीडीपी ग्रोथ जो आजकल स्टेट के जीडीपी आंकड़े जो हैं उन पे तो कोई भरोसा ही नहीं है।
1940 के दशक से ही त्रिपुरा में आदिवासी और गैर आदिवासी आबादी के बीच टकराव की स्थिति रही है। भारत के विभाजन और बांग्लादेश के बनने के बाद बड़ी संख्या में इस राज्य में पलायन हुआ था। त्रिपुरा में आदिवासियों के लिए विधानसभा की एक तिहाई सीटें रिजर्व हैं। बीजेपी ने त्रिपुरा में IPFT से चुनावी गठबंधन किया है। अगर बीजेपी यहां चुनाव जीतती है तो प्रदेश की राजनीति पर कैसा असर पड़ेगा? प्रभात पटनायक कहते हैं,
अगर किसी तरह से वो जोट वोट करके बीजेपी सत्ता में त्रिपुरा में आई तो मुझे तो ये डर है कि वो बंगाली वर्सेस ट्राइबल जो है ना उनमें जो सब कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो फिर उभर के आएंगे।
देश की राजनीति में त्रिपुरा का कोई खास हस्तक्षेप नहीं है, पर बीजेपी अगर यहाँ चुनाव जीतती है तो वामपंथी पार्टियों के लिए गहरा झटका होगा। रजनीश कुमार, BBC, नई दिल्ली।
इलाहाबाद में दलित छात्र की पीट पीट कर हत्या के मामले में एक ओर जहां शहर का माहौल गर्मा गया है, वहीं इस घटना की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी। पुलिस ने घटना के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य अभियुक्त जो रेलवे में TTE है अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। इस बीच राज्य सरकार ने पीड़ित छात्र के परिजनों को 20 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। पूरे घटनाक्रम पर लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
इलाहाबाद में रहकर कानून की पढ़ाई करने वाले छात्र दिलीप सरोज की रविवार को मौत हो गई थी। एक रेस्तरां में हुए विवाद के बाद दिलीप को कुछ लोगों ने बेरहमी से मारा पीटा और बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। पूरी घटना CCTV फुटेज के जरिए लोगों के सामने आई। घटना के विरोध में इलाहाबाद में छात्रों ने काफी उग्र प्रदर्शन किया और आगजनी भी की। गुस्सा अभी भी शांत नहीं है। पुलिस ने दावा किया है कि 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिलीप की हत्या के विरोध में इलाहाबाद में छात्र सड़कों पर उतर आए। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। 3 भाइयों और 2 बहनों में दिलीप सबसे छोटे थे। उनके बड़े भाई महेश चंद्र बताते हैं,
आपको बताऊं तो मेरी हिम्मत उस CCTV या वीडियो फुटेज को देखने की भी नहीं हो पाई है। इतनी बर्बरता उसमें है कि मैं अपने आप को मतलब देखने लायक अपनी स्थिति में भी मैं अभी उस मैंने स्थिति में हुई नहीं कि मैं उसको पूरा देख सकूं। क्या कहा जाए, परिवार के ऊपर पूरा बजट पाप है, क्योंकि देखिए किसी भी परिवार में जब बच्चा होता है और वो जो सबसे छोटा होता है ना वो सबसे प्रिय होता है, सबसे लाडला होता है, सबसे दुलारा होता है, तो आप समझिए कि पूरा परिवार ही फिर जाना होता है। कहाँ बताऊं कि क्या है, दोनों का दुख हुई है। मैंने अपना एक बाजू खो दिया है और उन्होंने कलेजे के टुकड़े को खोया है।
वहीं दिलीप की माँ का रो रो कर बुरा हाल है।
अपने बच्चे का 1-1 रुपया करके जोड़ जोड़ के पढ़ावत रहे, हम अपने सौसिखान नहीं समझे सर, हम नहीं अपने भैया के पढ़ावत रहे, हम कह मार भैया पढ़ लही अपन जम है अपन।
पुलिस के मुताबिक हत्या के मुख्य अभियुक्त गाजीपुर के रहने वाले विजय शंकर सिंह हैं, जो रेलवे में TT है। उनके 3 साथियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन विजय शंकर सिंह पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि घटना के काफी देर बाद पुलिस आई, जबकि उसे सूचना दी जा चुकी थी, लेकिन SPCT दावा करते हैं कि 7 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच चुकी थी। वहीं घटना पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। विधानसभा और विधान परिषद में विपक्षी सदस्यों ने इसे लेकर जहां सरकार को घेरा, वहीं BSP के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने रायबरेली पहुंचा। विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के नेता अहमद हसन ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया।
इस घटना ने पूरे प्रदेश को हिला के रख दिया है। अपराध चरम सीमा पे है, सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है अपराधियों पर और उल्टे अपनी नाकामी छिपाने के लिए फर्जी इनकाउंटर कर रही है।
फिलहाल सरकार ने पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया है, लेकिन दिलीप की मौत से परिवार पर जो कहर बरपा है उस पर शायद ही कोई मुआवजा मरहम लगा सके। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
अब आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं, आप जानते हैं कि 4 दिन पहले जम्मू में हुए चरमपंथी हमले में भारतीय सेना के 2 जवानों की मौत हो गई थी। दोनों जवान मोहम्मद अशरफ मीर और हबीबुल्लाह जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हैं। हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर दोनों के घर पहुंचे, उनके गमगीन परिवार से मिले। एक घर में उन्हें गहरा सन्नाटा मिला और दूसरे में सिर्फ रोने की आवाज़ें। सुनिए उनकी रिपोर्ट।
लोलाब कुपवाड़ा के मैदानपोरा में मोहम्मद अशरफ मीर के घर में उनकी बहन और माँ एक सेकंड के लिए रोना बंद नहीं कर रही हैं। घर के 2 कमरों में माँ और बहन के पास जितनी भी महिलाएं बैठी हैं वो भी रो रही हैं। 25 किलोमीटर दूर बटपोरा में हबीबुल्ला के घर पहुंचकर यहाँ गहरा सन्नाटा है। यहाँ हर एक सदमे में है। दोनों ही के घरों के बाहर लोग मृत शरीरों का इंतजार कर रहे हैं। मोहम्मद अशरफ और हबीबुल्ला 4 दिन पहले जम्मू में एक चरमपंथी हमले में मारे गए। मोहम्मद अशरफ सेना में GOC के ओहदे पर थे, जबकि हबीबुल्ला हवालदार थे। मोहम्मद अशरफ के पिता मोहम्मद अकबर मीर घर के गेट से बार बार सड़क की तरफ देख रहे हैं। जब भी कोई गाड़ी आकर रुक जाती है तो उन्हें लगता है कि उनके बेटे का शव लाया गया। मोहम्मद अकबर लंबी आह भरते हुए कहते हैं, मोहम्मद अकबर कह रहे थे कि एक बेटे को बड़ा कैसे किया जाता है वो एक बाप ही जानता है। मेरा बेटा हमारे पूरे परिवार को पालता था, हमें उन पर फख्र है कि वो देश के लिए शहीद हो गए। मोहम्मद अकबर कहते हैं कि जिस तरह उनका बेटा मारा गया ऐसा दोबारा ना हो। आप ही बताइए कि जब तक दोनों देश भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तब तक तो ऐसा होता रहेगा। आज मेरा बेटा तो कल किसी और का। मैं चाहता हूं कि ये मरने और मारने का सिलसिला भविष्य में ना दोहराया जाए। कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। ये थे मोहम्मद अकबर के शब्द। मोहम्मद अशरफ की 2 बेटियां और 1 बेटा है। हबीबुल्ला के घर पहुंचकर यहाँ चंद लोग बर्फबारी में खड़े हैं। दूर एक कोने में हबीबुल्ला के पिता अमानुल्लाह भी चुपचाप बैठे हैं। वो पास आकर बात करने लगे और कहने लगे कि बेटे की मौत से 1 दिन पहले उनकी उनसे फ़ोन पर बात हो गई थी। अमानुल्लाह कहते हैं कि मरने वाला जिनको अपने पीछे छोड़ता है उनके लिए बड़ी परेशानियां हो जाती हैं। वो बोले,
बीवियाँ भी रोती हैं, माँ बाप बूढ़े भी हैं, हर किस्म की परेशानी होती है। मरने वाले तो मर जाते हैं, जिंदगी के लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं। इसके लिए अगर
वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने ऐसा तो नहीं सोचा था कि उनका बेटा चरमपंथी हमले में मारा जाएगा, लेकिन साथ ही वो ये भी पूछते हैं कि वो सेना में गया था तो ऐसा होना ही था।
तो सोचा नहीं था, आखिर फौज में भर्ती हुआ लड़ने के लिए, देश की सेवा के लिए हुआ है। गवर्नमेंट मुफ्त खाने के लिए नहीं देती, वही तो किसी लिए पालती है। तो अभी हम भी सोचते हैं कि चलो उसने देश की सेवा किया, कुर्बानी किया, बलिदान किया तो ठीक किया।
इसके बाद अमानुल्लाह की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मकान में दाखिल होने के बाद दूसरी मंजिल में हबीबुल्ला की पत्नी एक कमरे में बैठी किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। उनके आसपास उनकी 6 बेटियां भी बैठी हैं जो माँ की तरह ही खामोश हैं। पापा का जिक्र सुनते ही सब रोने लगी। हबीबुल्ला की पत्नी जूं ही बात करने लगी तो वो रो पड़ी। बस इतना कहा कि अब उनके पास कोई सहारा नहीं, मेरी 6 बेटियां हैं। हबीबुल्ला 23 वर्ष पहले सेना में भर्ती हो गए थे, जबकि मोहम्मद अशरफ 18 वर्ष पहले। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
अब वक्त है दिल्ली से छपने वाले अखबारों की समीक्षा का। दिलनवाज पाशा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दिलनवाज, क्या खास है आज के अखबारों में?
जी, भारत प्रशासित कश्मीर में जो हमले हो रहे हैं लगातार, उसको लेकर के तनाव बढ़ता जा रहा है। और इंडियन एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का बयान प्रकाशित किया है। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं, आप मुझे देशद्रोही कह सकते हैं लेकिन ये भारत और पाकिस्तान के बात करने का वक्त है। वहीं इसका परस्पर विरोधी बयान द टाइम्स ऑफ इंडिया में है। भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो एक और जहां बातचीत की बात है वहीं देख लेने की धमकी।
दैनिक भास्कर ने इसी को आमने सामने दोनों की तस्वीरों के साथ छापा है कि सुबह विधानसभा में CM महबूबा बोली और शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री सीतारमण बोली, और दोनों के बयानों के जो विरोधाभास है उसको शीर्षकों में रेखांकित किया है। जी
जी कुलदीप, आज अखबारों ने भारत के अलग अलग राज्यों के सबसे अमीर और सबसे गरीब मुख्यमंत्रियों की सूची भी प्रकाशित की है। इसके मुताबिक भारत में 19 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके पास 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति है, और सबसे अमीर हैं चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनके पास 177 करोड़ की संपत्ति है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू के पास 129 करोड़ रुपये की संपत्ति है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री, उनके पास 48 करोड़ रुपये हैं। इसके अलावा सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के मानिक सरकार जिनके पास सिर्फ 26 लाख रुपए की संपत्तियां हैं। वहीं ममता बनर्जी के पास 30 लाख और महबूबा मुफ्ती के पास 55 लाख रुपए की संपत्तियां हैं। इसके अलावा एक और खबर जो आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है, रात में और आप भी उसका जिक्र कर रहे थे, दिल्ली की एक चलती बस में एक लड़की से छेड़छाड़, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर और लड़की ने इसकी शिकायत दर्ज करा दी है। बहुत ही शर्मिंदा करने वाली ये खबर थी।
एक खबर मैं जिक्र कर दूं, दैनिक भास्कर में है, वनों की स्थिति पर रिपोर्ट है और लिखा है कि दिल्ली में 2 साल में 3.64 वर्ग किलोमीटर बढ़ा जंगल, देश में बढ़ा 6,778 वर्ग किलोमीटर। तो देश में साल में 6,778 वर्ग किलोमीटर जंगल बढ़े हैं, ये वृद्धि दर करीब 1% है। तो जो लोग हरियाली को लेकर के चिंतित होते हैं उनके लिए खुशखबरी,
हरियाली से किसानों पर लौटते हैं। नई दुनिया ने एक खबर प्रकाशित की है जिस जो कह रही है बारिश व ओलों से दलहनी फसलों को नुकसान हुआ है और इसका आकलन मध्य प्रदेश की प्रशासनिक टीमें लगा रही हैं। कल ओलावृष्टि हुई थी और सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, कल उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी ओलावृष्टि हुई थी। और आज महाशिवरात्रि है, आज का नई दुनिया बता रहा है कि इंदौर में जो महाकाल मंदिर है वहाँ 44 घंटे तक दर्शन होते रहेंगे।
एक खबर जनसत्ता में मैं देख रहा हूँ कि SMS बताएगा असली नकली उत्पाद है, तो बाज़ार में नकली उत्पाद से परेशान लोग एक SMS करेंगे और कौन सा असली है और कौन सा नकली, ये आ जाएगा। डिटेल्स इस अखबार में आप और पढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया दिलनवाज पाशा अखबारों की समीक्षा के लिए। अब वक्त है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। चलिए सुबह सुबह सैर पर निकलते हैं और आपको लेकर चलते हैं दक्षिण अफ्रीका की ओर, जहां आज भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का 5वां मुकाबला खेला जाना है पोर्ट एलिजाबेथ के मैदान पर, जहां विराट कोहली की टीम की परेशानी रहेगी मिडिल ऑर्डर, जहां पर अजिंक्य रहाणे और धोनी की बल्लेबाजी सवालों के घेरों में है। तो वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम में AB डी विलियर्स की वापसी से टीम का मनोबल बढ़ता दिखाई दिया है, लेकिन पोर्ट एलिजाबेथ की पिच क्या कुछ कह रही है इस पर बात कर रहे हैं पूर्व क्रिकेटर और क्रिकेट विशेषज्ञ आकाश चोपड़ा।
ये पोर्ट एलिजाबेथ की पिच थोड़ी सी स्पिनर्स को मदद करती है। ये पिछले मैच में मेरी बात हो रही थी टैरल करिंगन से, जो साउथ अफ्रीका के पुराने अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं, उन्हें तो बहुत उम्मीद थी कि भारतीय दोनों स्पिनर्स वहां पे भी बहुत अच्छा करेंगे। मुझे लगता है बहुत अच्छा तो शायद ना करें, क्योंकि अब साउथ अफ्रीका उनको थोड़ा सा बेहतर खेलेंगे पहले के मुकाबले, लेकिन भारतीय स्पिनर्स के लिए वहां मदद जरूर रहेगी।
जहां पुरुष भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आज मैदान पर उतरेगी, तो वहीं महिला भारतीय टीम भी दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के खिलाफ T20 मुकाबले का पहला मैच खेलने उतरेगी। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही T20 ट्राई सीरीज का आज 4th मुकाबला है और ये मुकाबला न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेला जाना है। और क्रिकेट के मैदान से अगर आप Formula 1 की रेसिंग ट्रैक पर नजर डाले तो वहाँ पर अब आपको अवार्ड सेरेमनी में ग्रिड गर्ल्स नहीं बल्कि ग्रिड किड्स नजर आएंगे। क्रिकेट में IPL में जिस तरह से चीयरलीडर्स के तौर पर लड़कियों को नियुक्त किया जाता है, ठीक उसी तरह Formula 1 में अवार्ड सेरेमनी के दौरान लड़कियों को नियुक्त किया जाता था, लेकिन अब ग्रिड गर्ल्स को बैन कर दिया गया है और उनकी जगह ग्रिड किड्स यानी कि बच्चों को Formula 1 की अवार्ड सेरेमनी में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। Formula 1 की मैनेजमेंट टीम के इस फैसले से कई लोग खुश हैं तो कई लोग नाखुश भी हैं। जो लोग नाखुश हैं उनका ये मानना है कि महिलाओं को हक होना चाहिए कि वो किस तरह की नौकरी करना चाहती हैं और इस चयन के लिए वो पूरी तरह से आज़ाद हैं।
फेसबुक पर हमें लाइव सुन रहे श्रोता रत्नाराम लिखते हैं कि वनों के क्षेत्र में वृद्धि सुखद अनुभूति है, और सैयद अंसारुल लिखते हैं कि ये झूठ है कि जंगल कट रहे हैं, कंक्रीट के जंगल में बदल रहे हैं। हमें अपनी प्रतिक्रियाएं पहुंचाते रहिए। अब वक्त है चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए दिलनवाज पाशा से।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आधारभूत ढांचे में बड़े निवेश की अपनी महत्वाकांक्षी योजना पेश की है। ट्रंप ने इसे अमेरिकी इतिहास की इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ी और साहसिक निवेश योजना बताया है। दक्षिण अफ्रीका की सत्ताधारी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने राष्ट्रपति जैकब जूमा से 2 दिनों के भीतर इस्तीफा देने के लिए कहा है। जॉर्जिया के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल साक्षाविली को पोलैंड वापस भेज दिया गया है। वो नया राजनीतिक करियर शुरू करने यूक्रेन गए थे। लाइबेरिया के गृहयुद्ध में हुए सबसे बड़े अत्याचार में जिंदा बचे लोगों ने अमरीका में मुकदमा दायर किया है। बीबीसी समाचार।
इसी के साथ नमस्कार भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया राजेश चौहान ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचाया भूमिका राय ने। तो आप कुलदीप मिश्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार।